ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ततश्चाविर्भूत्साक्षात्
श्रीरमा भगवत्परा
रञ्जयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामिनी यथा तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवः रूपौदार्जवयोवर्ण
महिमाक्षिप्तचेतसः
तस्यासनमानिन्ये
महेन्द्रो महदद्भुतम्
मूर्तिमत्यः परिश्रेष्ठा हेम्बकुम्भैर्जलं शुचि
आभिषेचनिका भूमिः
आहरत सकलौषधे
गावः पञ्च पवित्राणि
वसन्तो मधुमाधवौ ततः इसके बाद च इसके साथ ही
आविः अभूत
प्रकट हुई साक्षात मूर्तिमती
श्री
संपत्ति
रमा
भगवत प्रेयसी
भगवत परा
विष्णु परायणा
रंजयंती
रागवती करती हुई दिशा
समस्त दिशाओं के जीवों को
कांति से विद्युत सौदामिनी यथा जैसे सुदाम पर्वत पर स्फटिक मणि के चट्टानों पर बिजली कुछ देर तक रुकती है उस तरह से अपना प्रभाव बिखरती हुई तस्यां उस संपत्ति रूपाश्री में
चक्रुह किए
स्पृहां
लालसा
सर्वे सभी
ससुरासुर मानवाः
सुर असुर और मानव के सहित रूपा
सौंदर्य
औदार्य
उदारता
वयः
नवयौवन
वर्ण
रंग
आदि की
महिमा
बड़प्पन से
अक्षिप्त चेतसः
चेताकृष्ट हो गया हरे कृष्ण। इस कथा में पधारे हुए आप सबका स्वागत है। विशेषकर का शामली से राधा शरण दास जी ऋषि जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अम्बाला से आए हुए भक्तों का मैं बहुत लेट स्वागत कर रहा हूं, तो रोज आते हैं। लेकिन सबका स्वागत है। और भी अनेक जगहों से आए हुए और यहाँ के जमुनानगर से आए हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से कि समुद्र मंथन से कौन कौन रत्न उत्पन्न हुए और किस प्रकार उनका बंटवारा हो रहा था। अप्सराओं के बाद समुद्र मंथन फिर चलता था। जब बहुत देर तक समुद्र मंथन हो रहा था तब कोई वस्तु उत्पन्न होती थी, उसके बंटवारा में बहुत ठीक करना पड़ता था भगवान को। तो जब बांट लिया जाता था तो फिर चालू होता था और उत्साह बढ़ता जाता था, क्योंकि अब बहुत सी वस्तुएं निकलने लगी थी तो पहले का किया हुआ मेहनत अब व्यर्थ नहीं जान पड़ता था, उत्साह बढ़ता गया। इसके बाद क्षीर समुद्र के लहरों पर जो मंद्राचल से आंदोलित हो रहा था समुद्र, तो उसकी लहरों पर श्री जी प्रकट हुए। ध्यान रखना चाहिए कि श्री जी के दो स्वरूप हैं, इसलिए यहां पर श्री और रमा कहा जा रहा है। रमा का अर्थ है जो भगवान को रमयति, या भगवंतम रमयति सा रमा, जो भगवान को सुखी करे सब प्रकार से तो उसको रमा कहते हैं। तो भगवान की प्रेयसी रूपा है, और एक श्री का रूप है। श्री का अर्थ है धन संपत्ति, तो वह संपत्ति भी मूर्तिमती लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी ही संपत्ति के रूप में है। यहां पर दोनों प्रकट हुई, दोनों प्रकट है, इसीलिए श्री और रमा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बाद में दोनों मिलकर एक हो गई, एकीभूत हो गई और भगवान के वक्षस्थल पर निवास किया, भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। उसी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ततश्च साक्षात श्री ही आविह अभूत आविर्भूत। साक्षात का यहां अर्थ है मूर्तिमती, मूर्तिमती संपत्ति लक्ष्मी प्रकट हुई, और भगवत प्रेयसी रमा तो प्रकट हो ही रही है। मूर्तिमती यहां साक्षात्कार थे, मूर्तिमती मूर्ति धारण करके प्रकट हुई। रंजयंती दिशह कांत्या विद्युत सौदा मनी जथा, तो जैसे किसी पर्वत पर जो स्फटिक मणि का है, ऊंची ऊंची ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, तो बिजली जब चमकती है तो पर्वत के उस स्फटिक पर टकरा करके वो दूसरे शिखर पर जाती है, दूसरे से तीसरे चौथे ऐसे घूमती रहती है, तो कुछ देर तक रुकती है, अन्यथा बिजली तो चंचला है तुरंत उगती है और विलीन हो जाती है। पर विद्युत सौदामणि जैसा ऐसा लग रहा था कि सौदामणि विद्युत ही अस्थिर है लक्ष्मी जी के रूप में। इसके द्वारा श्री जी के सौंदर्य का और उनके शरीर की कांति का वर्णन किया जा रहा है, बहुत सुंदरी जो भगवत प्रेयसी हैं उनके विषय में कहना ही क्या है। तो दिशा रंजयंती, उस सारे दिशाओं में रहने वाले जीवों को, देवताओं को, मनुष्यों को, दैत्यों को और सबको रंजयंती, रंजित कर रही थी, आनंद में भर रहे थे। इसका अर्थ यह है जैसे आगे का श्लोक कहेगा, सबके मन को रागवती कर रही थी। रागवती का अर्थ यह है कि सबके मन में स्प्रिहा हो रही थी। ध्यान रखना चाहिए कि जो संपत्ति रूप लक्ष्मी जी हैं उन्हीं की इच्छा हो रही थी, भगवत प्रेयसी की नहीं। इस संसार में सभी चाहते हैं कि हमें धन मिले, सौभाग्य मिले, किसी कार्य में सफलता मिले, जस मिले, इसको श्री कहते हैं। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि तस्यां चक्रु स्पृहां सर्वे स सुरासुर मानवा, स असुर सुर स सुरासुर मानवा, देवता असुर और मनुष्य के साथ ही विश्व के जितने भी जीव हैं सब श्री की कामना की है। तस्याम सर्वे स्प्रिहाम चक्रु, सबकी लालसा हो गई कि हमें मिले हमें मिले। बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वे लोग दूषित भावना किए कि स्त्री मुझे मिल जाए। कभी कभी अधिष्ठित और अधिष्ठान में भेद नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए भारत कहीं खेल करने गया, भारत के कुछ खिलाड़ी गए और वो जीत गए तो कहा जाता है कि भारत जीत गया। वास्तव में 10-5 खिलाड़ी जीते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रयोग किया जाता है भारत जीत गया। तो इस तरह से श्री की स्वामिनी है लक्ष्मी जी, इसलिए धन की स्वामिनी है, इसलिए धन को भी श्री जी कहते हैं या लक्ष्मी कहते हैं। हमारे इस्कान में तो लक्ष्मी पॉइंट कहते ही हैं पैसा को, कितना लक्ष्मी पॉइंट हुआ है ना, प्रकट बात है। तो सभी लोग लक्ष्मी की कामना किए, ये अर्थ है। सभी चाहते थे हमें राज्य मिले, भोग मिले, वैभव मिले, हम सुख से रहें, क्योंकि दुनिया में जो भी सुख से खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ये सब लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष का फल है, उनकी कृपा है। तो सबकी इच्छा हुई कि हमें यह लक्ष्मी मिले, मतलब हमें धन मिले, सौभाग्य मिले। देवता, मनुष्य और असु, सबकी इच्छा हुई। यदि भगवत प्रेयसी में इस प्रकार की स्पृहा होती तो सुखदेव गोस्वामी पहले आगे कहे हैं कि तस्या श्रिय त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवास मकरोत। भगवान ने तीनों जगत के पिता हैं और श्री जी जननी हैं, वे जनक हैं जननी हैं। और देवताओं का भाव कितना सुंदर है, आप पहले इसके बाद सुनेंगे। उनकी इच्छा नहीं हुई भगवत प्रेयसी के प्रति आकर्षण, अगर हुआ भी तो सबकी मां बुद्धि हुई कि यही पोसने वाली है, जिलाने वाली, खिलाने वाली, तो उसकी इच्छा हुई। वास्तव में धन की इच्छा हुई, तो उस स्त्री में धन में सबकी इच्छा हुई। तस्याम चक्रु स्पृहम सर्वे, सर्वे तस्याम स्पृहम चक्रु, सभी उसमें स्पृहा किए। ऐसा संसार में वास्तव में कोई नहीं है जो सौभाग्य नहीं चाहता है, जस नहीं चाहता है और रुपया पैसा नहीं चाहता है। चाहे कितना भी बड़ा विरक्त हो, वो भी तो चाहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें सुख सुविधा रहे। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसमें सब लोग स्पृहा किए, ससुरासुर मानवा। और उसके सौंदर्य, उदारता, नौजवान और वर्ण, इन सबके प्रति चित्त आकृष्ट हो गया। इन सबका अलग अलग अर्थ होगा। ये संपत्ति लक्ष्मी के लिए सुंदरता, उदारता, जवानी, वर्ण, इन सबकी महिमा से सबका चित्त खींच गया। ध्यान रखना चाहिए कि ये दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए मानवों में या दैत्यों में। दैत्यों में तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन यहां पर सामान्य रूप से बताया जा रहा है कि सबकी राज लक्ष्मी और भोग के प्रति इच्छा है, धन आदि के प्रति। और इसीलिए देवताओं के द्वारा जगत जननी लक्ष्मी जी की सेवा के प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। किस तरह भक्तों ने सेवा चालू किया, किसी के मन में कोई कामुक विचार की बात नहीं आई है, सेवा की बात आई। तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम्। सबसे पहले महेन्द्र, महाइंद्र अर्थात भगवान इंद्र, महत और अद्भुतम आसनम आनिन्ये, बहुत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक और महान, बड़ा और कीमती, रत्नों से बना हुआ बहुत सुंदर आसन अर्थात सिंहासन इस तरह से लाए। कौन लाए? महेंद्र, इंद्रदेव लाए। क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो खड़े कैसे रह सकते हैं। तो इस प्रकार उनकी भक्ति पूर्वक सेवा का वर्णन सुखदेव जी कर रहे। तो महेंद्र सबसे पहले आसन लाए, किसी के सत्कार में सबसे पहला सत्कार है उसे आसन देना, बैठने को कहना। तो महेंद्र आसन लाए, उस आसन के दो गुण बता रहे हैं सुखदेव जी, महत और अद्भुतम। महत का अर्थ है महान और अद्भुत का अर्थ है उसका साइज, रंग और उसमें लगे हुए विचित्र रत्न होंगे, इसलिए अद्भुत कह रहे हैं, अद्भुत विचित्र आसन लाए। और मूर्तिमत्या शरीर श्रेष्ठा हेम कुंभर जलम सूचि, और गंगा जमुना आदि नदियां मूर्तिमान होकर के सोने के कलशों में घड़ों में सूचि जलम अनिन्य, पवित्र जल लाए। सूचि मतलब पवित्र, लक्ष्मी जी के तो पीने के लिए चाहे उनके नहाने के लिए अभिषेक के लिए जो भी समझिए, तो मूर्तिमत्त शरी श्रेष्ठ वास्तविक बात है उनका अभिषेक होना है, तो अभिषेक के लिए नदियां मूर्तिमान होकर के सोने के घड़ों में जल लाएं लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी सबकी स्वामिनी हैं, गंगा आदि ये सब उनकी दासियां हैं, उनको डायरेक्ट भगवत प्रेयसी हैं, तो उनके स्वागत में नदियां मूर्तिमान होकर के स्त्री का रूप धारण करके और सोने के घड़ों में जल लाई। जल की विशेषता बता रहे हैं सूची जलम, पवित्र जल, शुद्ध और पवित्र जल लाई। और आभिषेचनिका भूमि आहरत सकलौ सधि, और भूमि, भूमि के लिए भी मूर्तिमती समझना चाहिए, यह भूमि देवी पृथ्वी मूर्तिमती होकर के जितनी भी अभिषेक में उचित सामग्रियां हैं औषधि जैसे जौ चावल और भी लता पता जड़ी बूटी जो भी अभिषेक के लिए उचित है वो स्वयं ही लाए मूर्तिमती होकर के पृथ्वी देवी सकल औषधि आजहार सब कुछ लाई। इस तरह से सेवा करने के लिए सब प्रस्तुत हुए। गाव पंच पवित्राणी बसंतो मधुमाधव, और गौ में पांच पवित्र वस्तुएं लाई, इसको पंच गव्य कहते हैं, दूध दही घी गोबर और मूत्र गोमूत्र, ये पांच पवित्राणी बहुत पवित्र वस्तुएं हैं, अभिषेक में इन पांचों की जरूरत होती है, तो गौएं लाई स्वयं। एक गाय ने पांचों दिया ऐसा वर्णन नहीं कर रहे हैं, गाव बहुवचन में है, गायों ने पांच पवित्र वस्तुएं दी, ऐसा कहा गया है एक शास्त्र में कि पय कांचन वर्णाया नीलाया च घृतम तथा दधि च कृष्ण वर्णाया श्वेताया गोमयम तथा गोमूत्रम ताम्र वर्णाया इत्येतत् पंच गव्य कम, ये पांच गव्य कहा, गव्य मतलब गौ का समान, गौ से उत्पन्न। तो कहा गया है कि कांचन वर्ण आया है जिसका रंग सोने जैसा है, पीली गाय है, तो उसका दूध लाना चाहिए, पीत वर्ण की गाय का दूध होना चाहिए, और नीलायाश्च घृतम तथा, और नीली गाय का घी होना चाहिए, पूरी काली नहीं थोड़ा नीला जैसा, और दधिच कृष्ण वर्णा और काली गौ का कृष्णा गौ का घी दधि होना चाहिए, और श्वेताया गोमयम तथा धौली गाय का उजली गाय का गोबर होना चाहिए, और ताम्र वर्णा या गोमूत्र और लाल गाय का मूत्र होना चाहिए। यह अभिषेक में इस तरह की बात, इसीलिए पांच गायों ने दिया, पांच वर्ण की गायों ने अलग अलग वस्तुएं दिया, इसलिए कहा गया है गाव पंच पवित्राणी, गायों ने गव्य नामक पांच पवित्र वस्तुओं को दिया। तो ऋषय कल्पयांच क्रूर अभिषेकम जथा विधि, तो वहां पर जुटे हुए ऋषि जन जिसमें अंगिरा आदि मुख्य हैं, तो ये लोग लक्ष्मी जी के अभिषेक की तैयारी करने लगे, ये सामान जुटाना ऐसे जुटाना कई तरह से। अभिषेक में खास वस्तुएं ही लाई जाती हैं जो भगवान के देह पर डाली जाती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी जूस मिले वो भगवान के आंख में लगे, चाहे कुछ भी हो बस डालते जाए। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं देखा मीरा रोड में बॉम्बे में मौसमी का जूस था, अनार का जूस, जितना जूस संभव था सब जुटाए थे। मैं कहा कि ये कहां लिखा गया है डालने के लिए, भगवान के देह पर घी डालना चाहिए, दूध दही मधु इत्यादि। तो मैं सब हटवाया, नहीं नहीं ये भगवान, और भी कोमल भगवान, अभी अभी जन्म हुआ है, इतना टेंडर शरीर और उन पर ये सब जूस डाला है, आंखों में लगती हैं। तो यहां पर कहा गया ऋषय कल्पयान चक्र अभिषेकम जथाविधि, जथाविधि शब्द से मैं बता रहा हूं, जथाविधि का अर्थ है कि शास्त्रों में जो विधि लिखी गई है, किस किस चीज की जरूरत होती है, किस किस चीज से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार जिन वस्तुओं की जरूरत थी जितनी मात्रा में जैसे ऋषि लोग सब जुटाए। और जगुर भद्राणी गंधर्वा नट्यश्चन नृतुर्जगु, उस समय गंधर्व जन खूब मधुर स्वर में गाने लगे। अभिषेक चालू होने वाला था लक्ष्मी जी का, तो गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नट्य जो नाचती हैं वो भी नृत्य करने लगी और गाने लगी। नाच और गान इसी को फेस्टिवल कहा जाता है वास्तव में, नहीं तो उत्सव किस काम का जिसमें नाचना और गाना न हो, नाचना गाना और उसके बाद खाना, यही है फेस्टिवल, यही है उत्सव। और नाच गान हो, खूब भूख लगी हो, शरीर थका हो और खाने के लिए प्रसाद नदारत हो जाए, तो फिर उत्सव क्या होगा। तो यहां पर खाने के लिए तो कहना ही नहीं, स्वयं श्री जी जहां पर मूर्तिमान प्रकट हैं, तो किस चीज का अभाव होगा। तो गान हो रहा था, गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गा भी रही थी, नट्यश्च न नृतुर जगु, नाच रही थी और गा रही थी, न नृतुर जगु। गंधर्व क्या गा रहे थे, जगुर भद्राणी, बहुत मंगलमय गीत गा रहे थे। गंधर्व भगवान का ही जस गाते, भगवान की कीर्ति, उनके सौंदर्य का वर्णन, उनकी कृपा का वर्णन, उनके तेज का वर्णन, कृपा, इस तरह से वर्णन करते हैं। जहां भगवान का कीर्तन गाया जाता है, भगवान का नाम गाया जाता है, तो इसको भद्राणी कहते हैं, कल्याण करता है, जो गाते हैं जो सुनते हैं उन सबका हित करता है। तो गंधर्व भगवान की कीर्ति गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और गा रही थी, और मेघ है स्वयं मूर्तिमान होकर बाजा बजा रहे थे, बादल बाजा बजा रहे, अथवा बादल मंद मंद गरज रहे थे और सब बाजे बज रहे थे। लेकिन प्रथमा विभक्ति में मेघा है, तो इसका अर्थ है कि मेघ है, बहुत बाजे बजा रहे थे। मृदंग पणव मुरजानक गोमुखान, मृदंग पणव मुरज आनक और गोमुख, शंख बेणु बीणा, इन सबको बादल स्वयं बजा रहे थे मूर्तिमान देवता के रूप में होकर के। शंख बेणु और बीणा, शंख बेणु बीणा, शंख और बेणु ये मुख से बजाए जाते हैं। तो श्री भगवान शंख लिए रहते हैं, कभी कभी वो बजाते हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो बेणु लिए रहते हैं। ये भगवान का परिचय, कोई पूछे कि भगवान कैसे हैं, क्या रूप है, तो पहला परिचय दिया जाएगा कि वो बांसुरी बजाते हैं, पहला परिचय, वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्ष, और उनकी आंखें कमल दल के समान सुंदर है, उससे भी अधिक सुंदर, बरहावतंसम, और उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट, अवतंस का अर्थ है मुकुट, बरह मतलब मयूर, मयूर पंख का मुकुट पहनते, और कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर। बाजा बजना और ढंग से एक बहुत बड़ी बात है। भगवान के कीर्तन में और उनके पद गान में, नाम संकीर्तन में यदि ठीक से बाजा बजता है तब आनंद आता है। इसीलिए बहुत तैयारी करनी चाहिए, बहुत अभ्यास प्रैक्टिस करना चाहिए। यह बहुत बड़ी सेवा है भगवान के कीर्तन में बाजा बजाना। तो मेघ स्वयं बाजा बजा रहे हैं, मृदंग, शंख, वेणु, वीणा, पणव, मुरज, आनक और गोमुख, तुमुल निःस्वनान, इनसे बहुत तुमुल आवाज निकल रही है। हम देखे यहां पर एक दिन कीर्तन हो रहा था तो मृदंग ढीला हो गया था, उसे कोई आवाज ही नहीं निकल रहा था। तो एक भक्त तो उसके पास माइक कर रहे थे लेकिन उसमें आवाज ही नहीं, तो माइक क्या करेगा, माइक अपने से तो आवाज पैदा करेगा नहीं। तुमुल निःस्वनान, बहुत अच्छी आवाज जोर से निकल रही थी। इस तरह लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जा रहा है। ततो भी शिश्चुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलश सुक्तवाक्ये द्विजय रीतः। तब ब्राह्मणों के द्वारा, अंग्रादि ब्राह्मणों के द्वारा सुक्त चालू हुआ, वेद के सुंदर सुंदर श्लोक, जैसे ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं, इस तरह सुउक्त वाक्य, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक गाने लगे ब्राह्मण लोग। और दिशाओं के हाथी अर्थात ऐरावत आदि हाथी ये अपने सूंड में कलश ले करके, पूर्ण कलश, आकाश गंगा का जल, पवित्र जल का कलश अपने सूंड में लेकर के और लक्ष्मी जी के ऊपर बहुत कोमल धारा से अभिषेक कर रहे हैं। शिशुचुष्म शिशुचुर ततो शिशि चतुर देवीम, देवीम का अर्थ जो द्योतमान है अथवा क्रीड़ा करती हैं, जो वैभव दान द्वारा, धन वितरण द्वारा क्रीड़ा करती रहती हैं, को देवी कहते हैं। श्रीयम संपत्ति रूपा लक्ष्मी, पद्मकराम हस्त कमलाम, अपने कमल हस्ताम, अपने हाथ में कमल ली थी, यह भगवत प्रेसी का वर्णन है। श्री जी अपने हाथ में हमेशा कमल लिए रहती हैं। जिस समय उनका अभिषेक हो रहा था उस समय भी उनके हाथ में कमल था। क्यों कमल लिए रहती हैं? श्री जी के भी चार हाथ हैं अपने प्रियतम भगवान जैसे, तो भगवान एक हाथ में कमल लिए रहते हैं। अपने पति के देखा देखे, श्री जी भी कमल लिए रहते हैं, ये स्वाभाविक है। कमल बहुत सुंदर चीज है। तो पद्म कराम, जिनके कर में हाथ में पद्म है, ऐसे श्री जी, और सती पतिव्रता, तो पतिव्रता और पद्मकरा श्री का अभिषेक होने लगा। कौन अभिषेक कर रहे थे? ऐरावत आदि हाथी, पूर्ण कलश है, शुद्ध जल से भरे हुए कलश से अभिषेक कर रहे थे। और सुक्त वाक्य द्विजय रीत, और ब्राह्मण जन वेदों के श्लोक बोल रहे थे। समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपाहरत। जब अभिषेक हो गया तब समुद्र देवता, जिनकी बेटी हुई है लक्ष्मी जी, समुद्र से उत्पन्न हुई थी इसीलिए इनको समुद्र की पुत्री कहते हैं। तो मेरे अपनी पुत्री के इस अभिषेक में समुद्र दो रेशमी वस्त्र लाए, एक नीचे के पहनने के और एक ओढ़ने के, ओढ़नी जैसे ब्रज में स्त्रियां पहनती हैं इस तरह से। वाससी दो वस्त्र, और पीत कौशेय अभिषेक के बाद या विवाह में पीत वस्त्र पहनने की प्रथा है। और अभिषेक में या विवाह में पीला वस्त्र पहनने की प्रथा है। और लोक में भी देखा जाता है कि विवाह के समय पिता ही अपनी पुत्री को साड़ी देता है या वस्त्र देता है, जो भी देना है। समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपाहरत, समुद्र अपनी पुत्री श्री को दो रेशमी वस्त्र समर्पित किए। वरुण सृजम वैजयंतीम, और वरुण देव जो इंद्र के भाई हैं उन्होंने वैजयंती माला दिया। वैजयंती माला कहते हैं उसको जिसमें पांच रंग के फूल गुथे रहते हैं, पांच वर्ण, श्वेतई पीतैश तथा नीलय लोहितैर हरितैश तथा पुष्पितैर विरचिता माला वैजयंती इति कथ्यते। वैजयंती इति कथ्यते। वैजयंती माला का अर्थ है जिसमें पीले रंग के फूल लगे हों तथा नीले, लाल, हरे, श्वेतई पीतई तथा नीलय लोहितई हरितैश तथा, तो इस प्रकार से पांच वर्ण के पुष्प जिस माला में गुथे गए हैं उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो वरुण देवता श्री जी को माला समर्पित किए, वैजयंती माला। यह है सेवा भगवान की या लक्ष्मी जी की। कोई आसन दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई अभिषेक की सामग्री ला रहा है। मैं उधर भूल गया बसंत के कहने के लिए। आभिषे चनिका भूमिरा हरत शुक्ल औषधि, पृथ्वी ने तो समस्त औषधियों को दिया और गाय पंच पवित्र वस्त्रीय दिन बसंतो मधुमाधव, और बसंत ऋतु मूर्तिमान होकर के चैत और वैशाख में लगने वाले फूल और फल दिया। अभिषेक में फल की भी आवश्यकता होती है, फूल की आवश्यकता होती है, तो स्वयं ऋतुराज बसंत प्रकट होकर के और चैत्र और वैशाख महीने में खिलने वाले फूल और फल दिए। इसके बाद मैं वर्णन कर रहा था तो समुद्र पीले वर्ण के रेशमी वस्त्र दिए दो, वरुण जी वैजयंती माला दिए, भूषणानी विचित्राणी विश्वकर्मा प्रजापति, और प्रजापति विश्वकर्मा जी लक्ष्मी जी को बहुत विचित्र बहुत मूल्यवान आभूषण दिए, सभी प्रकार के आभूषण। जिन आभूषणों का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी किए हैं तो अद्भुत रत्न लगे थे, अद्भुत साई सब कुछ, इसलिए विचित्राणी कहा गया है। भूषणानी विचित्राणी विश्वकर्मा प्रजापति, विश्वकर्मा जी एक देवता हैं और शिल्प के कंस्ट्रक्शन के वे सबसे हेड है। उनके संकल्प करने से बड़े सुंदर सुंदर भवन बन जाते हैं, केवल सोचने इतनी उनकी क्षमता है। तो ये गहना लाए लक्ष्मी जी के लिए, हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले, और सरस्वती जी प्रकट होकर के लक्ष्मी जी को हार दी, रत्न का हार, और पद्मम अजह अजह श्री ब्रह्मा जी कमल लाए, नया कमल लाए लक्ष्मी जी के हाथ में देने के लिए। पद्मम अजह अज स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी कमल लाए, और नागाश्च कुंडले, और वासुकी आदि नाग ये लोग लक्ष्मी जी को दो कुंडल दिए कर्णभूषण। इस प्रकार श्रद्धा से सब लोगों ने कुछ न कुछ श्री जी को भेंट किया। इसके बाद श्री जी अपने आचरण द्वारा दूसरों को शिक्षा देने के लिए अपने आश्रय पति रूप आश्रय पाने के लिए चली। इस तरह से वस्त्र पहन ली, कुंडल आदि सब कुछ ठीक हो गया तो श्री जी एक फूल की माला लेकर के जिसको वर माला कहते हैं वो चली। ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी भगवान की नित्य प्रिया है, नित्य प्रेयसी हैं। ये जो अपने वर की खोज के लिए वो चल रही हैं उस विशाल सभा में जहां सब लोग बैठे हैं समुद्र मंथन के समय, और सब और भी लोग आए थे लक्ष्मी जी की बात सुनकर के और जगत के सब लोग आए थे, तो उस विशाल सभा में श्री जी घूमने लगी और ऐसा भाव व्यक्त किया कि हमें अपना पति चुनना है, जबकि वो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है, परंतु अपने आचरण से जगत को शिक्षा देने के लिए कि इसी तरह से अन्य का परिहार करके छोड़ करके विष्णु को ही वरण करना चाहिए, भगवान को ही वरण करना चाहिए, और इसी कारण से वे दूसरों में दोष का आविष्कार करते हुए, दोष बताते हुए सारे देवताओं में सब में और भगवान में केवल गुण ही गुण कह करके उनका वरण कर रही। तो किस तरह स्वयंवर के लिए अपना वर स्वयं चुनने के लिए श्री जी चलते हैं, इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। ततः कृत स्वय स्वस्ते न उत्पल सजम न द्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुखपोल कुंडलम सब्रीडहासं दधते सुशोभनम। श्री जी जब वर माला लेकर के, जय माला लेकर के और वर के अन्वेषण में चलती हैं, तो मानो सुखदेव गोस्वामी चित्र खींचने जैसा वर्णन कर रहे हैं। उस समय वीडियो कैमरा रहा होता तो श्री जी का फोटो आया होता कैसे वो चल रहे, परंतु इतना आश्वासन है कि सुखदेव गोस्वामी जी के शब्दों में वही शक्ति है, तो वीडियो जैसे काम करता है, उपस्थित कर देता है वो दृश्य। ततः कृत स्वस्तैना, इसके बाद श्री जी का स्वस्ति वाचन हुआ, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए भक्तों ने, ब्राह्मणों ने उनके विषय में मंत्र पढ़ा वेदों से, और श्री जी इसके बाद सज धज करके अलंकृत होकर के चली चचाल। क्या लेकर के? परिगृह पाणिना, अपने एक हाथ में उत्पल सृजन कमल की माला लेकर के चले। एक ऐसी माला थी जिसमें केवल कमल खिला हुआ था, कमल था। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी केवल कमल की माला बनाई जाती, कुमुदिनी की, कमल तो इधर मिलता नहीं, कुमुदिनी की माला। तो कमल की माला लेकर के चली नदब द्विरेफान, जिस पर भौंरे भन 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 कर रहे थे, इतनी ताजी माला थी, इतना सुगंध था फूलों में कि भौंरे उस पर मंडरा रहे थे, और एक हाथ से लेकर के चली थी। एक हाथ से क्यों पकड़ी थी परिगृह पाणिना? एक हाथ से इसलिए पकड़ी थी कि दूसरे हाथ से अपने साड़ी के आंचल को संभाल संभाल करके उन्हें अपने सिर पर रखना था। तो दाएं हाथ में वे कमल की माला लेकर के चल रही और बाएं हाथ से अपने को संभाल रही। कभी कभी उनके मुख पर भी भ्रमर आते हैं, उनको भी हटा रही है कि फूल के भ्रम से, कमल के भ्रम से भौरे भी श्री जी के मुख पर आ रहे हैं। इसलिए एक हाथ से कमल पकड़ी, माला पकड़ी है। चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम सबृढ़ हासम दधती सुशोभनम। अब श्री जी के मुख का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। वक्त्रम सुकपोल कुंडलम, बहुत सुंदर गाल है श्री जी का। ध्यान रखना चाहिए कि श्री सुखदेव गोस्वामी मां के भाव से श्री जी का वर्णन कर रहे हैं, परम सुंदरी भगवत प्रेय से। तो सुकपोल सुंदर कपोल है, सुकुंडलम और कुंडल बहुत अच्छा है जो कानों में झूम रहा है, और सब्रीर हासम श्री जी के मुख पर लज्जा के साथ मुस्कान है, हंसी है। स्वाभाविक स्त्री के मुख पर मुस्कान हो, हंसी हो, लेकिन उस पर लज्जा का अंकुश होना चाहिए, सलज्ज हंसी। इस तरह श्री जी के मुख पर स्वाभाविक हंसी थी, परंतु उस पर लज्जा का अंकुश था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते सब्रीड़ हासन, ब्रीड़ा मतलब लज्जा, लज्जा के साथ हंसी थी। सुशोभनम, अतिशय सुंदर मुख, ऐसे मुख से युक्त श्री जी एक हाथ से माला लिए हुए चचाल चली। चचालक का अर्थ है चली, कहां से? आसन से, इंद्र भगवान के दिए हुए आसन पर वो पहले बैठी थी और फिर अभिषेक हुआ था। इसके बाद वहां से चली माला लेकर। तो श्री जी के सौंदर्य का और वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। स्तन द्वयम् चाति कृशोदरी समम निरंतरम चंदन कुमकुम अक्षितम। स्तन द्वयम् दधति इति शेष। श्री जी के दोनों स्तन बड़े सुंदर हैं, समम एक समान है, निरंतरम दोनों में दूरी बहुत कम है, दूरी नहीं है स्तनों के बीच। इसे सिद्ध होता है कि बड़े बड़े स्तन हैं, चंदन कुमकुमोक्षितम और स्तनों पर चंदन और कुमकुम का उक्षितम लेपम लेप है। ततस्ततो नुपुर वल्गु सिंजते सिंजन विसर्पति हिमलते वसा बभव। और जगह जगह जब चल रही हैं उस विशाल सभा में, ततस्ततः का तत्र तत्र नुपुर बल्ग सिंजितई, ये चलती हैं तो उनके पैर के सुंदर पायजे बहुत सुंदर ध्वनि करते हैं, बहुत मधुर ध्वनि करते हैं। और इस तरह से जब वो घूम रहे थे तो ऐसा लगता था कि सोने की लता चंचल होकर के जंगम होकर के उस सभा में घूम रही है। हेमलता इव बभव। यद्यपि ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई लता घूमे चले, लेकिन श्री जी स्वयं गौर वर्ण की हैं, पीली साड़ी पहनी है और अलंकार आदि बहुत सुंदर था, तो ऐसा लग रहा था कि सोने की लता हेमलता विसर्पति वही घूम रही है यहां से वहां बभव। इस तरह से वो परम सुंदर लग रही थी। सोने की लता है, चूंकि फूल की माला ली है और साड़ी ओढ़ी है तो कई इसीलिए लता से उपमा दी जा रही है, लता। अब विसर्पति इधर से उधर चल रही हैं, देख रही हैं लोगों पर, देख रही हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी हेम लता इव बभव, स्वर्ण लता जैसे सुंदर लग रही थी। यदि ऐसा कभी हो कि कोई पीली लता हो, गोल्डन लता हो और वो चलने लगे, अपने थाला से अपने स्थान से वो चलने लगे, तो इस तरह से श्री जी चल रही और वैभव बहुत सुंदर लग रही। क्यों घूम रही थी उस सभा में? तो सुखदेव जी कहते हैं, विलोकयन्ति निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारी सद्गुणं गंधर्वजक्षासुरसिद्धचारण त्रवीष्ट पेयाद्विसुनान बिन्दत। विलोकयन्ति, श्री जी देख रही हैं, सब पर देख रही हैं, वहां बैठे हुए लोगों पर भी और जो अतीत में बीत गए हैं और वर्तमान में हैं, भविष्य में होने वाले जितने भी बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग, सबकी समीक्षा कर रही हैं। विलोकयन्ति और अपने लिए आत्मनः निर्वद्यम पदम, अपने लिए निर्दोष पति चुनना चाहती हैं। तो भगवान को पहले से ही स्वीकार कर ही चुकी हैं अनादि काल से, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के लिए इस तरह से चुनाव कर रही है। आत्मनः निर्वद्यम पदम, अपने लिए निर्वद्य निर्दोष पद, अवद्य का अर्थ होता है दोष, निर्वद्य मतलब निर्दोष, पदम पति रूपम। वे पति की खोज में हैं, कैसा पति? ध्रुवम, जो नित्य होना चाहिए, लक्ष्मी जी के मन में है जो नित्य होना चाहिए। ऐसा तो केवल भगवान ही है। नित्य का अर्थ है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसमें भी उसी रूप में है, उसकी जवानी में ह्रास नहीं होना चाहिए, उसका धन कम नहीं होना चाहिए, उसका ज्ञान कम नहीं होना चाहिए। तो भी संसार में ऐसा कौन है जो नित्य है? कोई नित्य नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। आज युवक आदमी है, कल वृद्ध हो जाएगा, तो उसकी जवानी अनित्य है। आज धनी है, धन है किसी के पास, कल दरिद्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज ज्ञान है, कल कुछ भी याद नहीं रहेगा। देखते हैं संसार में कितना प्रैक्टिकल जीवन है अनित्यता का। सरकार भी किसी नौकरी में लेती है तो बाद में उसको अपाहिज समझकर रिटायर कर देती है, कभी काम लायक नहीं है ना। मिलिट्री में भी रिटायर करती है या जज बनाए जाते हैं उनको भी रिटायर कर देते, टायर हो गए अब पूरा हटा दे तो रिटायर हो गए पूरा किसी काम के रहे नहीं, केवल जियो खाओ। उस दशा में सबको चाहिए कि माला लेकर हरे कृष्ण जाप करे। जब सरकार ने भी हटा दिया कि अब किसी काम का नहीं है, फिर भी लोग माया के कार्यों में लगे रहते। लेकिन लक्ष्मी जी ऐसा पति चाहती थी जिसमें बुढ़ापा नहीं है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, जिसका धन वैभव सौंदर्य ज्ञान सब कुछ एक रस बना रहे और जिसमें कोई दोष न हो, ऐसा पति चाहते हैं। निर्वद्यम और ध्रुवम पदम, अव्यभिचारी सद्गुणम, और जिसमें सद्गुण हो, नित्य गुण हो लेकिन अव्यभिचारी। यहां अव्यभिचारी का अर्थ, व्यभिचार का अर्थ है बदल जाना, परिवर्तन हो जाना, विकार होना, इसको व्यभिचार कहते हैं। जैसे आज कोई सुंदर है, युवक है, लेकिन कल वृद्ध और कुरूप हो जाएगा तो इसको कहेंगे व्यभिचार, एक रस स्थिति नहीं रही। लेकिन लक्ष्मी जी ऐसा वर चाहती थी जो अनंत सद्गुणों से विभूषित हो और जिसके सद्गुण अव्यभिचारी हो, एक रस रहे, परिवर्तन न हो। ऐसे अपने पद आश्रय के लिए वे माला लेकर के घूम रही थी, परंतु गंधर्वों में, यक्षों में, असुरों में, सिद्धों में, चारणों में और देवताओं में कहीं भी ऐसा एक भी व्यक्ति उनके दृष्टि में नहीं आया। गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध चारण त्रैविष्ट पे या दिशु नानो बिंदत, कहीं भी किसी को भी नहीं देखा, चाहे देवताओं में, असुरों में, गंधर्वों में, यक्षों में या चारणों में, सिद्धों में, फिर मनुष्यों में तो उन्होंने दृष्टि भी नहीं डाला कि मनुष्य में कोई ऐसा है। मनुष्य तो सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति होता है, सबसे कम ज्ञान, अभिमान बहुत होता है कि हमको बहुत ज्ञान है, और 10-20 वर्ष की आयु होती है लेकिन सोचता है कि कल्प तक मेरा अंत नहीं होने वाला है। रामायण में लिखा गया है कि सब आयु मिलाकर पंच दशा कल्पांतन नाश गुमान आशा, 10-5 वर्ष की आयु होती है कलयुग में, लेकिन मनुष्य ऐसा सोचता है कि अब हम मार्कंडे जी जैसा कल्प पर्यंत जीने वाले, हमारा नाश नहीं होने वाला। मनुष्य को मृत्यु को जरूर देखना चाहिए यदि अपना कल्याण चाहता है तो, कि 2 दिन की जिंदगी है, जाना है, इसलिए भगवान की भक्ति कर लें, शुभ कर्म कर लें, पाप न करें। लेकिन ऐसा ज्ञान छाया हुआ है। लक्ष्मी जी अपना इस तरह का आश्रय चाहती हैं, लेकिन गंधर्वों में और यक्षों में, गंधर्वों में कोई नहीं मिला। गंधर्वों में जैसे विश्वावसु गंधर्व हैं, चित्ररथ गंधर्व हैं, कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें सारे दुर्गुण न हो और जो मरने वाला न हो और जिसके सारे ज्ञान आदि गुण अविचल हो, ऐसा कोई नहीं। यक्षों में जैसे कुबेर जी हैं, कोई ऐसा नहीं, न अनुअबिंदत, नहीं पाए। असुरों में बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हिरण्यकश्यप आदि सब कुछ, कोई ऐसा नहीं। और चारणों में, सिद्धों में कहीं नहीं पाई। लक्ष्मी जी कहीं भी नहीं देख रही हैं किसी भी व्यक्ति को, एक मुकुंद के अलावा, विष्णु के अलावा कहीं भी किसी में दोषहीनता नहीं है और सर्वगुण की विद्यमानता नहीं है, उसी को कह रही हैं। लक्ष्मी जी अपने मन में क्या क्या सोचती हैं इसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, नूनम तपोजस्य न मन्यु निर्जय ज्ञानम क्वचित न संगवर्जितम कश्चिद महान्तस्य न काम निर्जयो स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। लक्ष्मी सोच रही है इस संसार में बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, नूनम तपो तपह किए हैं, बहुत इंद्रियों को वश में करके और तप करने वाले बहुत हुए हैं, लेकिन देखा जाता है लक्ष्मी जी कह रही है कि नूनम तपो जस्यन मन निर्देव, बहुत बड़ी तपस्या किए, दूब की घास खा करके जिए, इंद्रिय पितरी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसे लोग दुर्वासा आदि ऋषि भी न मन निर्देव, उन्होंने क्रोध को नहीं जीता, क्रोध को नहीं जीत सके। देखिए दोष किसमें क्या क्या दोष है और गुण कुछ नहीं है, थोड़ा सा गुण है तप तो क्रोध के कारण तपस्या भी व्यर्थ हो गई, नील हो गए, कोई गुण नहीं रहा। लक्ष्मी जी सब विचार कर रही और तप आदि में भी मुकुंद के समान वो कभी नहीं है, सबसे बड़े तपस्वी ज्ञानी सब कुछ भगवान है वास्तव में, किसी किसी में थोड़ा सा तप है लेकिन न मन्यु निर्जय, मन्यु मने क्रोध, तपस्या है लेकिन क्रोध को नहीं जीते, तो क्रोध को नहीं जीते तो उस क्रोध के चलते तपस्या भी बेकार हो गई, सब काट कूट कर जीरो हो गया, और कोई गुण था नहीं, थोड़ा सा तप आदि किए तब तक क्रोध आ गया, तो क्रोध ने तपस्या के फल को जीरो कर दिया, कुछ गुण नहीं है। नूनम तपो जस्यन मन निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम, किसी किसी में देखा जाता है कि बहुत ज्ञान है, जैसे बृहस्पति जी शुक्राचार्य, इन दोनों में बहुत ज्ञान है। भगवान कृष्ण तो शुक्र नीति का बार बार उदाहरण देते हैं, ज्ञानियों में शुक्राचार्य बहुत बड़े ज्ञानी, कवि नाम उसना कवि, विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं, भगवद्गीता में कहते हैं विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं, और बृहस्पति जी तो देव गुरु ही ठहरे, देवताओं को बुद्धि देने वाले, इनके पास ज्ञान है लेकिन संग वर्जित नहीं है, इनकी जो सांसारिक आसक्ति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, वैराग्य नहीं है, इसलिए वो ज्ञान भी बेकार हो गया। शुक्राचार्य को कितना ज्ञान है, मृत संजीवनी विद्या तक जानते हैं, मरे हुए व्यक्ति को उसका शरीर काट काट कर कई टुकड़ा में कर दिया गया हो फिर भी उसको जिला देते हैं, जिसको काट दिया गया शरीर को खंड खंड इस तरह मर गया उसको भी जिला देते हैं मृत संजीवनी विद्या द्वारा, और भी इनको बहुत ज्ञान है परंतु बहुत आसक्ति है घर गृहस्थी में। इनकी बेटी देवयानी थोड़ी सी शिकायत कर दे अपने पति के प्रति कि वे दूसरी स्त्री में भी आसक्त है, इस पर वे तुरंत उनको बूढ़ा होने का साप दे दी अपने दामाद को ही। अटैचमेंट है घर में और पत्नी में या राजभोग में असुरों के यहां सर्विस करते हैं, जितने असुर हैं उनके पुरोहित शुक्राचार्य हैं, और असुर क्या करेंगे सबको विदित है, उनको देवताओं के विरुद्ध राय देना ये देना, और इसलिए कि ये देवता ये असुर जो हैं विश्वकर्मा वगैरह ये हमको कुछ देंगे हम सुख से रहेंगे, तो ज्ञान किस काम का हो, किस काम का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान भी नहीं हो, ज्ञान भी जीरो हुआ। और कश्चित महान तस्न काम निर्जय, कोई कोई बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं जन्म की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से, जो महिमावान है जैसे ब्रह्मा जी या सोम चंद्रमा, पर इन्होंने काम वासना को नहीं जीता है। लक्ष्मी जी कह रहे जिसमें काम है वो हमारा आश्रय नहीं हो सकता है, लक्ष्मी जी साफ कह रहे हैं, जिसमें किसी चीज को भोगने की लालसा है काम वासना है और उसमें भी स्त्री को भोगने की वासना है, वह व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो किसी काम का नहीं है। तो ब्रह्मा जी में महत्व है, बहुत बड़े हैं, चारों वेदों के विद्वान हैं, पितामह कहे जाते हैं इस विश्व के, परंतु वे भी अपने पुत्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे दौड़े थे, और जबकि वो हरिणी बनकर के दौड़ी थी लज्जा के मारे, तो ये भी हरिण बनकर उसका पीछा किए। तो लक्ष्मी जी कहते ये बेकार है, ये हमारे पति नहीं हो सकते, हमारा पति वो होगा जिसमें काम वासना बिल्कुल नहीं है। वो तो वैसे तो केवल भगवान ही है, तो कश्चित महान तस्मिन् काम निर्जय, कोई महान है, महिमावान है, महत्ववान है, लेकिन उसमें काम है, काम को उसने नहीं जीता है। तो इस तरह से सारे गुण पर पानी फिर गया। और चंद्रमा सोम, सोम इतने आसक्त इतने कामी व्यक्ति कि वे अपने गुरु की पत्नी को किडनैप किए, अपहरण किए जबरदस्त, और गुरु पत्नी के साथ उन्होंने गमन किया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे बुध कहते हैं, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने रखा। तो इस प्रकार का व्यक्ति इतना महान जगत को आलोकित करते हैं, समस्त ब्राह्मणों के और पेड़ पौधों के राजा हैं चंद्रमा, पोषण करते हैं, लेकिन गुरु पत्नी को उन्होंने ब्लात ले लिया और बृहस्पति जी के विनय करने पर भी नहीं छोड़ रहे थे। झगड़ा हुआ उसके लिए, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, तब जा करके उन्होंने छोड़ा उसको। तो इतना बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा जी और इतने बड़े चंद्रमा, लेकिन इन्होंने काम को नहीं जीता, इसलिए सब थर्ड क्लास के, बिल्कुल बेकार, ये हमारा आश्रय नहीं हो सकते, लक्ष्मी जी विचार कर रहे हैं। और आगे कहती हैं, धर्म क्वचित सही स्वरह किम परतो व्यपाश्रय, और फिर इंद्र पर विचार करती हैं, सही स्वरह किम परतो व्यपाश्रय, वह ईश्वर कैसे हो सकता है जो दूसरे पर आश्रित है, परत व्यपाश्रित व्यपाश्रय व्यपाश्रित दूसरे पर आश्रित है। इंद्र हमेशा उपेंद्र की शरण में रहते हैं, वामन भगवान जो स्वर्ग में उपेंद्र के रूप में रहते हैं, देवता के रूप में, और भावना के रूप में नहीं रहते हैं, तो उपेंद्र के आश्रय में हमेशा इंद्र रहते हैं। तो वह ईश्वर क्या है जो दूसरे के सहारे पर रहेगा, अथवा परत व्यपाश्रय, जिस व्यक्ति के शत्रु उसको हमेशा बार बार अपने स्थान से हटा देते हैं, स्वर्ग से बार बार हटना पड़ता है इंद्र को, तो वो ईश्वर कैसे हो सकता है, वो ईश्वर है नहीं, इसका मतलब बहुत कमजोर, जिसको उपेंद्र का आश्रय लेना पड़ता है और जिसको बलि आदि शत्रु बार बार स्वर्ग से हटा देते हैं, वो कैसे ईश्वर हो सकता है, अर्थात इंद्र हमारा आश्रय नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी सबसे महान महिमा वाली स्त्री है, महिला है, और वे अपने लिए आश्रय ढूंढ रही हैं। इसे ये सीखना है कि वास्तव में समस्त जीवों के सबके एकमात्र आश्रय श्री विष्णु हैं, और वे सर्व दोष विवर्जित हैं, सर्व सद्गुण मंडित हैं, उनमें सारे सद्गुण हैं और कोई दोष नहीं है भगवान में, वे काम को जीते हैं, उनमें क्रोध नहीं है, विष्णु में क्रोध नहीं है, इसका इतना सुंदर ज्वलंत उदाहरण भागवत में दिया गया है। सब कहा गया है, एक बार सुखदेव जी कथा कह रहे हैं कि सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करने में ये विचार चला कि भाई तीनों ईश्वरों में देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी इसको जांच करके आया जाए। सब लोगों ने मिलकर के भृगु जी को नियुक्त किया कि आप जा करके परीक्षण करके आइए कि इन तीनों भगवानों में देवताओं में कौन श्रेष्ठ। तो भृगु जी तो जानते थे, लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए वो गए, तो सबसे पहले वे ब्रह्म लोक गए, सत्य लोक, ब्रह्मा जी के वो पुत्र है। तो जब भी ब्रह्मा जी से पहले मिलते थे तो प्रणाम करते थे, और इस बार तो इनको एग्जाम लेना था, परीक्षा लेना था ब्रह्मा जी के धैर्य की, ब्रह्मा जी में कितना धैर्य है, कितनी सहनशीलता है। तो ब्रह्मा जी ये सोचे कि प्रणाम करेगा, हमेशा किया ही था, तो भृगु जी गए और बस चुपचाप ऐसे पूछे, कैसे हैं पिताजी? ब्रह्मा जी तो देख करके दंग हो गए, विधि का लड़का इतना नालायक हो जाए। वो सोचे इसको क्या हो गया है, लेकिन फिर बाद में एक अज्ञान आया, आखिर अपना पुत्र है, इसको कुछ बोलूंगा तो हम हमारी लोग आलोचना करेंगे कि आप कैसे ट्रेनिंग दिए हैं इसको, अब स्वयं निंदा करने लगे बेटा की। तो चुपचाप रह गए, बोले नहीं, लेकिन क्रोध मन में बहुत आया, यह प्रणाम नहीं किया। तो अभी प्रणाम की जिसको इच्छा है वो कैसे भगवान हो सकता है? प्रणाम न किया जाए इसी में वो आधा हो गया, बिगड़ जाए, हाय हमको कुछ नहीं मिला। अब बताइए, इतने अभाव की अनुभूति जिस व्यक्ति को हो और अपेक्षा हो कि ये हमको प्रणाम करे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कुछ कोई हो, तो कैसे पूर्ण व्यक्ति माना जाएगा? तो ब्रह्मा जी की परीक्षा भृगु जी ले लिए, बहुत क्रोध किए, क्रोध को पी गए, चुपचाप रह गए। ब्रह्मा जी बोले नहीं, आज का बाप रहता तो कितनी गाली देता है बेटा को इस तरह से। गाली क्या देगा, ऑलरेडी लड़के ऐसा रोज करते हैं, इसलिए पिता सहते सहते सब कंप्लीट हो गए। परीक्षा ले ली कि ब्रह्मा में कोई धैर्य नहीं है, प्रणाम कराने की अभी इच्छा है। इसके बाद शिव जी के धाम गए, कैलाश गए। भगवान शिव बैठे हुए थे तो वे खड़े हो गए कि हमारे भाई आए हैं। ब्रह्मा जी के नेत्रों से शिव जी का जन्म हुआ है और भृगु जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो भगवान शिव जी खड़े हो गए कि हमारे भाई आए हैं तो इनसे मिलें, अखबार भर करके मिलें। लेकिन प्रश्न पत्र बहुत कड़ा कर दिया था भृगु जी ने। जब ही भगवान शिव आए मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए, तो भृगु जी कहते हैं, चल है पिशाच, कहीं रहता है श्मशान में, हड्डी लगाता है, आता है छूने के लिए, चलो हटो। अरे बाप रे बाप, वो भगवान शिव आ रहा है प्रेम से मिलने के लिए और इनको वो कह दे पिशाच हो, तुम नहाते नहीं हो कभी और श्मशान में डेरा डाल करके रहते हो, राख लगाते हो, हड्डी पहनते हो, तुमको छूना कितना बड़ा पाप होगा, चलो हटो। ये तो असह्य हो गया भगवान शिव के लिए, इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि त्रिशूल उठा करके मर्डर करने के लिए तैयार हो गए। बताइए, अरे भाई है, अगर कुछ बोल ही दिया तो सहना चाहिए ना, तब ना वो ईश्वर है कि शक्ति कितनी है सहन शक्ति। लेकिन वो त्रिशूल उठा करके एकदम मस्तक काटने के लिए चल दिए, तब तक पार्वती जी पैर पर गिर करके मनाई, बहुत भारी बेइज्जती होगी दुनिया में, ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्या गलती की, एक थोड़ा बोल दिए तो क्या किए, तो चरण पकड़ करके मना ले, इसके बाद शांत। लेकिन शांत हुए पर सांप जैसा लंबी सांस लेते हुए शांत हुए। और भृगु जी को तो कल परीक्षा लेना है, तो पहले से ही जानते थे कि ये लोग क्या करेंगे। इसके बाद गए बैकुंठ, जो इसी जगत में बैकुंठ है वहां गए। तो श्री भगवान शेष सज्जा पर लेटे थे और श्री जी चरण दबा रही थी, तो पहुंच गए और पहुंच करके जाते ही लात मारे भगवान के छाती में। ये देखिए परीक्षा, अपना चरण मारे छाती में और कहे आलसी, कहीं कि हमेशा सोए ही रहते हो। भगवान को कहते ही है गर्भोदक साई, काणोदक साई, चिरोदक साई, सोने वाला, और तो दिव्य निद्रा में भगवान रहते हैं। हम लोग जैसे तमोगुण में भगवान कभी नहीं रहते। तो आंख बंद किए किए सारी दुनिया की गतिविधि को देखते हैं। तो इन्होंने ऐसे कहा और कहा ही नहीं, लात मारा छाती में। भगवान हड़बड़ा करके उठे और उठ करके नीचे बैठे और इनको उस बेड पर बैठा करके और भगवान चरण दबाने लगे, कहे कि आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं, मेरी छाती कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई होगी, आप मुझे क्षमा करें, आपके आने की सूचना मुझे नहीं थी, नहीं तो मैं आपका रिसेप्शन किया होता, आपको आपकी अगवानी किया होता, आप मुझे क्षमा कीजिए। और भगवान चरण दबाने लगे, चरण दबा रहे थे, भृगु जी बैठे थे और उनकी आंखों में स्नेह के आनंद के आंसू आ गए भृगुदेव। भगवान बार बार क्षमा मांग रहे हैं कि हमारी छाती कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट लगी होगी। अगर शिव जी को ये लात मार दिए होते तो क्या न्यूज आता कि भृगु जी गए दुनिया से, है ना। केवल बात बोलने से उतना, मरने से बच गए थे किसी तरह, केवल बात बोलने से। और लात मारे होते तो क्या होता है, शिव जी लात पकड़ करके ऐसा पटकते मारते कि उसी समय खत्म हो गए। देखिए भगवान किसको कहते हैं, जिसमें अपार धैर्य है, अपार शांति है, क्षमा है और अनपेक्षता है। हमको कोई प्रणाम करे या मत करे, हमको कोई कुछ दे या मत दे, तो पूर्ण है, भगवान है। और उसके बाद भृगु जी के चरण को भगवान ने अपने छाती पर सदा के लिए धारण कर लिया। वो इतना जोर से ब्राह्मण मारा था कि वो लात बिल्कुल छाप मार दिया। अब तक भृगुपद चिन्ह धारण करते हैं भगवान, अपना सौभाग्य मान करके एक ब्राह्मण का पूज्य चरण हमारे वक्षस्थल पर है। भगवान ब्रह्मण्य देव है। तो इस प्रकार भृगु जी आए और उन्होंने तीनों देवताओं के पास जो कुछ बीती थी सब सुनाया कि ये बात। तो कोई संदेह रह गया क्या कि वास्तविक ईश्वर कौन है, वास्तविक भगवान कौन है? तो श्री जी यहां वैसे ही विचार कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज विचार की है, लेकिन जगत के जीवों को सिखाने के लिए कि विष्णु ही आराध्य हैं, मुकुंद ही आराध्य हैं, इस बात को कह रही हैं। कश्चिन महान तस्न काम निर्जय स ईश्वर किम पर तो व्यापास, वह ईश्वर क्या हो सकता है, इंद्र के विषय में कह रहे हैं। वो कैसे ईश्वर हो सकता है जिसको दूसरे से बहुत चाह है, दूसरा रक्षक है और जिसको अपने स्थान से बार बार हटना पड़ता है। इस संसार में तो प्रकट देख सकते हैं, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, लेकिन काल द्वारा बाधित पद है। पता नहीं अगले चुनाव में मिलेगा पद कि नहीं मिलेगा, कि शत्रु विस्थापित कर देंगे। लगे ही हुए हैं कई पार्टी के लोग, ये नहीं कहा जा सकता कि अस्थिर पद है, अव्यभिचारी पद है। जब तक पद पर हैं तब तक टीवी न्यूज़पेपर आदि में फोटो भरे रहते हैं, और जब पद से गए तो किसी को पता भी नहीं चलता कि जी रहे हैं कि क्या हो गए, है ना। ये संसार की अनित्यता देखिए। पर भगवान का जो स्वरूप है, ज्ञान आनंद और ऐश्वर्य, सब कुछ नित्य है। वह काल द्वारा बाधित नहीं है, स्थान द्वारा बाधित नहीं है। कि भगवान विष्णु बस इतने वर्ष के लिए भगवान हैं और इसके बाद हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो श्री जी विचार कर रहे हैं। धर्म क्वचित तत्र भूत सहृदम, फिर श्री जी विचार कर रही हैं कि कहीं कहीं धर्म है, मतलब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उसमें जीवों के प्रति स्नेह नहीं, सौहार्द नहीं। धर्म का पालन जैसे परशुराम आदि में, परशुराम जी धर्म का पालन किए, क्या पालन किए, अपने पिता की आज्ञा का पालन किए, लेकिन अपने मां को ही मार दिए। किसी किसी में धर्म का पालन है लेकिन भूत सौहार्द नहीं है, दूसरे जीवों के प्रति दया नहीं है। ये तो दिखा रहे हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं लेकिन मां का मस्तक काट दी, ये कौन सा धर्म है? इसलिए धर्म का पालन भी नील हुआ। उस दृष्टि से विचार किया जा रहा है, एक व्यक्ति मान करके, भगवत्ता की दृष्टि से विचार नहीं किया जा रहा है परशुराम जी के लिए, लेकिन श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कहीं कहीं धर्म का पालन देखा जाता है। आदमी का जो कर्तव्य है वर्ण और आश्रम के अनुसार उसको करता है, लेकिन जीवों के प्रति दया नहीं है। तो ऐसे निर्दयी आदमी यदि धर्म का पालन भी करे तो उस धर्म के पालन में क्या दम है। इधर कई कई बार भगवान से प्रार्थना करो और उधर कोई जीव काट करके खाओ, मुर्गा मुर्गी बकरा गाय, ये कौन सा धर्म है? क्या उस धर्म में दम है? ये तो खैर लक्ष्मी जी यहां मनुष्यों के बीच विचार नहीं कर रही हैं। मैं कथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं, मनुष्यों पर तो विचार ही नहीं की। जैसे हम लोग कभी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करेंगे तो मनुष्यों में कोई योग्य व्यक्ति को चुनेंगे, ऐसा है ऐसा है। हम लोग सुअर के बीच सुअर के समुदाय में फिर नहीं चुनेंगे कि अच्छा ये ठीक है ये ठीक है तो बेकार है। उस तरह मनुष्यों के विषय में लक्ष्मी जी विचार नहीं करती है कि हमारे आश्रय हैं, हमारे ध्रुव पद हैं, क्योंकि मर्त्य कहा जाता है मनुष्यों को, मरना स्वाभाविक है और कब कौन मर जाएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है मनुष्यों में। देवताओं के यहां गारंटी है कि इतने वर्षों के भीतर नहीं मरेंगे, वहां गारंटी है सब कुछ, लेकिन यहां कुछ नहीं है। यहां भी इंश्योरेंस देते हैं मरण का इंश्योरेंस, लेकिन उसका मतलब यह है कि आप मर जाएंगे तो आपका पैसा आपके पुत्र को पत्नी को किसी को दिया जाएगा, लेकिन आपको मरने ही नहीं दिया जाएगा, ऐसा इंश्योरेंस कुछ नहीं है, है ना? कोई है ऐसी कंपनी जो ये गारंटी देती हो कि आप नहीं मरेंगे? और ये भी नहीं दे सकते कि अच्छा ठीक है आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 100 साल जिएंगे, इसके बाद हमारा गारंटी नहीं। 100 साल का भी गारंटी नहीं दे सकते, एक दिन की भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। यहां ऐसी स्थिति है मनुष्य समाज में सदा से, अभी नहीं, इसीलिए श्री जी मनुष्यों को नहीं गिन रही हैं इस विषय में। तो धर्म क्वचित तत्र भूत सहृदम, किसी किसी में धर्म पालन देखा गया जैसे परशुराम आदि में, लेकिन जीव पर दया नहीं। त्याग क्वचित तचन मुक्ति कारणम, किसी किसी में त्याग देखा गया है जैसे शिवी महाराज। शिवी महाराज कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिए, किसको? बाज पक्षी को। तो ऐसा दान करने से मुक्ति थोड़े होगी, ऐसा त्याग करने से मुक्ति नहीं होगी। त्याग वो करना चाहिए, धन का दान करना है या शरीर का दान करना है, ऐसा करना चाहिए कि व्यक्ति फिर कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, भगवान उसके उस त्याग से प्रसन्न हो। त्याग कहीं कहीं देखा गया लेकिन मुक्ति देने वाला नहीं होता है। वीरजन न पुंसोस त्यजवेग निष्कृतम, फिर विचार कर रही है। मैं पहले ही कहा कि तीनों काल में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, हो गए हैं, होंगे, उनके दोषों को निकालने का लक्ष्मी जी बता रही है। ऐसे थोड़ा सा गुण कहती हैं और उस गुण को भी व्यर्थ कहकर के केवल दोष वर्णन कर रही है, दोष ही दोष है। और मुकुंद में श्री भगवान में केवल गुण ही गुण है और दिव्य अलौकिक गुण है सब, और अव्यभिचारी गुण है अर्थात नित्य गुण है, इस बात को कह रहे हैं। तो वीरजन न पुंसोस त्यजवेग निष्कृतम, किसी किसी पुरुष में बहुत बड़ा बल देखा गया है, पराक्रम देखा गया है, जैसे कार्तवीर अर्जुन। कार्तवीर अर्जुन के 1000 भुजाएं थी, भगवान दत्तात्रेय ने दिया था, तो एक बार वो 500 धनुष चलाता था, दो दो हाथ से एक धनुष, बहुत बड़ा वीर था, बहुत बड़ा वीर। उसने रावण को ऐसे कीड़े की तरह पकड़ लिया था। सहस बाहु दस बदन आदिनिप बचे न काल बलि थे, लेकिन ऐसे कार्तवीर अर्जुन का बल वीर से काल के वेग से बाहर नहीं है। अजवेग निष्कृतम, ऐसा नहीं है कि काल छोड़ दिया उसको। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बलवान, लेकिन काल द्वारा उसका बल निश्चित रहा। काल एक दिन उस बल को, वीरता को समाप्त कर देता है। तो ऐसा पुरुष हमारा पति होकर क्या करेगा जिसको मरना निश्चित है? अजवेग निष्कृतम वीर नहीं है, नहीं द्वितीय गुणसंग वर्जित। और गुणसंग वर्जित सनकादिक ऋषि हैं, ये प्रकृति के गुणों के में आसक्त नहीं है, लेकिन ये भी मेरे लिए द्वितीय नहीं हो सकते हैं। द्वितीय का अर्थ है वर पति, ये हमारे योग नहीं हो सकते हैं। क्यों? समाधि निष्ठत्वात्, ये हमेशा समाधि में रहते हैं। तो किसी स्त्री का पति वो कैसे होगा जो हमेशा बस समाधि में ही रहे? इस प्रकार का नालायक हस्बैंड जो हमेशा समाधि में ही रहे, स्त्री के लिए कुछ जुटाना नहीं, ना बात करना, मनोरंजन नहीं करना, ऐसा पति किस काम का है? अथवा इसका एक अभी अर्थ विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं, जो गुण संग वर्जित है, जो भगवान के अप्राकृत गुणों से भी वर्जित है, उनकी सुंदरता सौरभ्य आदि गुणों से भी वर्जित है, वो मेरा द्वितीय नहीं हो सकता। सिर्फ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं समाधि निष्ठत्व, ये चार कुमार ब्रह्मा जी के ये समाधि में रहते हैं, तो इनका विवाह ही कोई करके क्या करेगा? मान लीजिए इनके लिए कोई कन्या ला दे, विवाह कर दे, तो वो अब हजारों साल समाधि में ही बैठे रहे। ऐसे लोग भी बेकार है, विवाह कर लिए और जब देखिए तब हमेशा समाधि में और भजन में ही रहते हैं। जो वो ऐसे, ऐसा पति किस काम का है? पति ऐसा चाहिए जो पालन करे पत्नी का, उसके लिए कमाए, पुरुषार्थ करे, उसकी संकट से रक्षा करे पत्नी की, उसे अलंकार दे, वस्त्र दे, उसे अच्छा घर दे, पुत्र दे, तब उसे पति कहते हैं। तो श्री जी एक तरह से विचार कर रहे हैं, चाहे वो संकादिक ऋषि हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे फिर कहते हैं क्वचित चिरायुर नहीं सील मंगलम, कोई कोई बहुत जिएंगे, बहुत लंबी उम्र है, लेकिन उनमें सील और मंगल नहीं है। सील मंगल का अर्थ होता है भोग भोगना, स्त्री की खुशामद करना, ये पति के लिए जरूरी है। वो पत्नी को प्रसन्न रखने की चेष्टा करे तो इसको संस्कृत में सील मंगल कहा गया है। तो किसी किसी की उम्र बहुत ज्यादा है, जैसे मार्कंडेय जी, लेकिन उनमें सील मंगल नहीं है। सील मंगल का अर्थ भोग में रुचि नहीं है, अतः वे लोग स्त्री को कैसे रखा जाएगा, कैसे खुश रखा जाएगा, जरूरत पड़े तो उसका चरण भी दबाना चाहिए, ये सब जानते ही नहीं है। तो ऐसे मार्कंडेय आदि थर्ड क्लास के आदमी भले जीवित रहे लाखों वर्ष, ये पति बनाकर क्या होगा इनको? कभी कोई जानते ही नहीं है कि भोगों में रुचि नहीं है और स्त्री को कैसे रखा जाएगा, कैसे खुश रखा जाएगा, ये जानते नहीं है। प्रत्येक गृहस्थ को ये जरूरी है कि ये जान ले कि स्त्री को कैसे खुश रखा जाएगा। उसको खुश रखना जरूरी है, क्योंकि वो आधा अंग है, अर्धांगिनी है, उसके बिना पति आधा ही है। उसको प्रसन्न रह करके और जथा योग्य उसे वस्तु की सप्लाई करके प्रसन्न रखना जरूरी है। हमने सुना विदेश में कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, कुछ पत्नियां, कि वे अपने पति से हमेशा सुनना चाहती हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो अंग्रेजी में बोल रहे थे कि कभी कभी कोई पति घंटे घंटे पर फोन करता रहता है कि आई लव यू, रियली आई लव यू, आई नेवर फॉरगेट यू, ऐसे घंटे घंटे पर ऑफिस से फोन करता रहता है। और जिस दिन देर के बाद फोन आती है तो पत्नी पूछती है क्यों भूल गया था, क्या जो फोन क्यों नहीं किया, तो कहने में क्या बिगड़ता है कि आई लव यू क्यों नहीं कहते हो? तो कुछ लोग रेगुलर टाइमली ये कहते रहते हैं और वो अपेक्षा करती है पत्नी, ये व्यक्ति का फोन आएगा हमारे पास, तुम्हारी बहुत याद आ रही है और अभी मैं जल्दी ही ऑफिस से आ जाऊंगा। ये कहना चाहिए वास्तव में, भले झूठा हो फिर भी झूठ बोल करके भी पत्नी को खुश रखना चाहिए। इस झूठ को झूठा नहीं माना गया है, शास्त्र भागवत कहता है स्त्रीसु नर्म विवाह है चौ वृत्यर्थे प्राण संकटे, स्त्रियों के बीच झूठ बोलना झूठ नहीं माना गया, क्योंकि स्त्री की जितनी मांग होती है उसको दे देना पुरुष के लिए बहुत असंभव है, बहुत मांग होती है, प्रभुपाद जी कहते थे कि एक देश का खर्चा चलाना आसान है लेकिन पत्नी का खर्चा चलाना आसान नहीं। तो उसे झूठ बोल बोल करके खुश रखना पड़ता है, वादा करके ठीक है आगे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल झूठ ही बोले, लेकिन कभी कभी दाल में नमक डालने जैसा थोड़ा झूठ बोलकर काम चला लेना चाहिए। ज्यादा नमक डालेंगे तो दाल फेंकना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। इस प्रकार शील मंगल शब्द की व्याख्या में कर रहा हूं। कुछ लोग संसार में बहुत बड़े हुए हैं, क्वचित चिराय, बहुत लंबी जिंदगी वाले, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि स्त्री के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे उसको खुश रखेंगे। तो लंबी उम्र होने से क्या हुआ, सब बेकार, तो उनके साथ मैं कैसे रह सकती हूं। यह किसी भी स्त्री के लिए शिक्षा दी जा रही है। जो व्यक्ति स्त्री को खुश रखना नहीं जानता, उसे प्रेम नहीं करता है, तो उसको कैसे पति बनाया जा सकते हैं। क्वचित तदप्य स्तिनवेद्य मायुष, और किसी किसी में यह शील मंगल देखा गया, देखा जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु, वो जानता था स्त्री को प्रसन्न करना और भोगों को भोगना, राज्य भोगना, लेकिन न वेद्य मायुष, उसके आयु कहीं ठिकाना नहीं है कि कितना दिन जिएगा। भगवत द्वेषेण अकस्मात मृत्यु संभवत, उसके आयु का कोई ठिकाना नहीं। इतना बड़ा व्यक्ति, चिरायु, शील मंगल जानने वाला, भोगों का संग्रह करने वाला, राज्य जुटाने वाला, दसों दिशाओं को जीतने वाला व्यक्ति, पर उसके आयु का कोई ठिकाना नहीं। भगवान से द्वेष करने के कारण अकस्मात मार दिया गया, अकस्मात। इस तरह का नमूना लक्ष्मी जी पेश कर रही हैं। इतना बड़ा व्यक्ति, पर प्रहलाद महाराज को जिस दिन मारना चाहता था अपने हाथ से, उसी दिन भगवान प्रकट होकर उसे छीड़कर फेंक दिए। ऐसा पति नहीं चाहिए कि आज है दुनिया का राजा है, कल हाथ निकालकर फेंक दिया गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं चाहिए पति। क्वचित तदप्य स्थिति वेद्य मायुष, अब इसके बाद भगवान शिव पर विचार कर रहे हैं लक्ष्मी की। जत्रो भयम कुत्र च स्वप्य मंगल, किसी किसी में दोनों है, चिरंजीवी भी है, बहुत काल तक रह जिएगा, और शील मंगल भी है। शील मंगल का मतलब है भगवान शिव अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा भागवत में वर्णन है, कभी कभी शिव जी कथा के लिए भी बैठते हैं, कथा कहते हैं, तब भी पार्वती जी को अपने जांग पर बैठाए रहते हैं। लेकिन यह तो उनकी भगवत्ता है, वास्तव में गोद में बैठी हुई पार्वती भी उनमें काम वासना पैदा नहीं कर पाती, और ऋषि लोग कभी दोष दृष्टि नहीं करते। नारद जी, सनकादि आदि सब कथा सुनते हैं शिव जी के मुख से, और शिव जी गोद में लेकर बैठाते हैं, वो बैठते अपनी पत्नी को लेकर, वो लोग कभी दोष दृष्टि नहीं करते, जानते हैं कि निर्विकार ईश्वर है और उनकी लोकोत्तर लीला है। तो स्त्री को खुश करना, स्त्री से प्रेम करना शिव जी जानते हैं, और चिरंजीविता भी उनमें है, परंतु सौप्य मंगल, लेकिन वो उनका जो घर है, वेशभूषा है, सब बेकार। लक्ष्मी जी कहते उनको कहीं भी फ्लैट बनाने को जगह नहीं मिलता है, श्मशान में रहते हैं। शिव जी का प्रसिद्ध है रेजिडेंस है श्मशान। यद्यपि यह गुण है भगवान शिव का, काहे को झगड़ा करने जाए किसी से, श्मशान में कोई रहता नहीं, वो खाली रहता है तो वहीं वो रहते काम चला लेते। लेकिन कितना खराब है श्मशान में रहना है, और वहीं मुर्दे की राख लपेटना शरीर में। उज्जैन में महाकालेश्वर के लिए रोज फ्रेश राख आता है। हम एक बार गए थे तो मंदिर में एक जगह रखा था राख भस्म, तो कहे ये लगाओ, तो मैं कहा क्या है, अरे बिल्कुल ताजा मुर्दा की राख है, और ये भगवान शिव का प्रसाद है। मैं कहना है इस प्रसाद के योग्य भगवान शिव ही है, हम नहीं लगा सकते, हमने नहीं लगाया, कहना ही नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है इसको लगाने का। परंतु भगवान शिव का वो रोज आभूषण ही है, कभी स्नो पाउडर क्रीम को लगाए ही नहीं, जानते ही नहीं, राख लगा लेना और सोना चांदी कभी पहने नहीं, हड्डी का गहना पहन लेते और माला भी कभी नहीं पहनते हैं, सांप लपेट लेते हैं गर्दन में, बहुत संभाल करके भगवान शिव को रहना पड़ता है अपने परिवार में। एक भक्त ने कहा है कवि ने कि जानते हैं शिव जी क्यों विष पिए, क्या कारण है विष पीने का? तो वास्तव में जगत के हित के लिए, सबके रक्षा के लिए विष पिए, लेकिन वो कवि कहता है नहीं, अपने परिवार के कलह से उब करके आत्महत्या करने के लिए पिए थे। तो क्या दिक्कत है भगवान शिव के परिवार में? तो कवि कहता है पहले तो इनकी दो पत्नियां हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है, एक तो पार्वती जी हैं पत्नी, भगवान शिव वो पत्नी पार्वती जी, तो पार्वती जी हमेशा जलती रहते हैं कि हमारी सौत गंगा को अपने कपार पर चढ़ा लिया है, अब शिव जी के जटा में गंगा जी रहती हैं, तो पार्वती जी एकदम जलती रहती हैं, गंगा का इतना बड़ा सौभाग्य उसको अपने सिर पर चढ़ा लिए है। किसी को सिर पर चढ़ा लेना ये तो ऐसे ही उसके अभिमान को पोषने वाला होता है। और गंगा जी कलकल नाद करती है, जब गिरती हैं तो कहती हैं कि तुम जलकर क्या करोगी, जो हमको इन्होंने स्वेच्छा से धारण किया है, मानो वो बोल रही है। तो पार्वती जी में और गंगा जी में ये कलह चलता रहता है। अच्छा, दूसरी बात है कि भगवान के दो पुत्र हैं शिव जी, एक गणेश जी और कार्तिकेय। तो कार्तिकेय का सवारी है मयूर, तो मयूर है भगवान शिव के गर्दन में लपेटे हुए सांप को खाने के लिए हमेशा लपकता है, मयूर सोचता है गप से खा जाऊं उनके, तो वहीं बैठे सारा दरबार शिव दरबार में रहते कार्तिकेय जी रहते हैं मयूर, तो भगवान शिव कभी कभी सांप को छिपाते हैं हाथ से ऐसे और उसको डांटते हैं मयूर, ए दूर चलो दूर चलो। तो कभी भी अगर अवसर मिलेगा तो उनके गले से निकाल करके वो खा जाएगा सांप को मयूर, तो सांप भी छिपा रहता है इधर उधर और भगवान शिव को बचाना पड़ता है, ये सांप को खाने ना पा रहे। और गणेश जी का सवारी चूहा है, तो वो सांप जो है वो चूहा को खाने के लिए लपकता है, वो उसको बचा करके गणेश जी के सवारी को बहुत बचा कर रखना पड़ता है। और भगवान शिव सांप को पकड़ते हैं, क्या कर रहे हो उधर उसको बचाते हैं, उधर मयूर से बचाते हैं सांप को, सांप से चूहा को बचाते हैं, और भगवान शिव का सवारी बैल है और उनकी पत्नी का सवारी बाघ, तो बाघ बैल पर आक्रमण करना चाहता है हमेशा, हमेशा खा जाना चाहता है। तो शिव जी इस परिवार के कलह से उब करके सोचे कि सुसाइड कर जाऊं, लेकिन भगवान का नाम जपे है खूब इसलिए मरे नहीं। वो कभी कहता है भगवान का नाम बहुत जपे हैं, नाम जपत शिव अमर भयउ, वो अमर हो गए नाम जपने से, इसलिए चाहते हुए भी नहीं मर पाए। कभी विनोद में ऐसी बात कहा है, लेकिन जो भी है भगवान शिव का परिवार ऐसा बेढंगा है, तो भगवान शिव का परिवार, उनकी सवारियां, उनका खान पान, उनका श्रृंगार, घर सब बिल्कुल अमंगल है, लक्ष्मी जी कहती, तो इनको अपना आश्रय चुनना है तो बिल्कुल गलती होगी। तो जब शिव जी तक में केवल दोष ही दोष निकाल रही है, तो और किसने गुण निकालेंगे? अब शिव जी के बाद उनका ध्यान गया श्री मुकुंद के पास, भगवान के पास, भगवान बगल में ही थे, तो कहते हैं सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमाम, लेकिन एक व्यक्ति है जो समस्त गुणों से भरा हुआ है, पर उसमें एक दोष है कि वो मुझे चाहता ही नहीं है, अनपेक्ष है। इसका मतलब श्री मुकुंद भगवान विष्णु सब तरह से परिपूर्ण है। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की उनको कोई आवश्यकता नहीं, न किसी व्यक्ति की अपेक्षा है, सब तरह से परिपूर्ण है। परमानंद घन है, आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए वे हमारी आकांक्षा नहीं करते। सब में दोष निकाल रही थी, इसलिए ब्याज स्तुति द्वारा भगवान में भी दोष निकाल दिया लक्ष्मी के। इनमें एक ही दोष है कि ये मुझे चाहते नहीं है। क्यों चाहे, भगवान तो अपने लाभ से परिपूर्ण है, दिव्य आनंद में है, उनको क्या जरूरत है कोई स्त्री रहे तब उनको सुख मिलेगा, आनंद होगा। लक्ष्मी जी तो वैसे भी उनके साथ रहती ही हैं, लेकिन भगवान को जब पुत्र पैदा करना हुआ तो अपने नाभि से कमल और कमल से विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा को पैदा कर दिए। भगवान डिपेंड नहीं है किसी पर सृष्टि करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। मनुष्य डिपेंडेंट है, आश्रित है, बिना स्त्री के बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और स्त्री डिपेंडेंट है, आश्रित है पुरुष पर, लेकिन श्री भगवान निरपेक्ष हैं। सब लोग लक्ष्मी जी को चाह रहे थे, सब लोग धन संपत्ति चाह रहे थे, चाहे शिव जी हों, ब्रह्मा जी हों, सब लोग, लेकिन श्री भगवान ऐसे हैं जो बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे लक्ष्मी जी की तरफ, कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि पूर्ण है। तथापि भले भगवान लक्ष्मी जी को नहीं चाहे, पर ऐसे निरपेक्ष मुकुंद को ही अपने पति के रूप में वर्ण किया लक्ष्मी जी ने। एवं विमर्श्या व्यभिचारी सद्गुण ही वरम निजय का स्वतया गुणाश्रयम बब्रे वरम सर्वगुणैर अपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षम इप्सितम। इस प्रकार निरपेक्ष भगवान को ही, श्री विष्णु को ही लक्ष्मी जी ने वरम बब्रे अपना वर चुना। सर्वगुणैर अपेक्षितम एवं विमर्शा व्यभिचारी सद्गुण, भगवान में अव्यभिचारी और नित्य गुण सदा रहते हैं। इन गुणों की चर्चा प्रथम स्कंध में की गई है, पृथ्वी और धर्म के संवाद में। निजय का आश्रय तैयार, लक्ष्मी जी चाहती थी अपना आश्रय तो उनके अपने आश्रय के रूप में, और अगुणाश्रयम या गुणाश्रयम, समस्त गुणों के आश्रय या गुणातीत भगवान को अपने वर के रूप में चुना। सारे गुण मुकुंद की अपेक्षा करते हैं, अणिमा लघिमा महिमा आदि सिद्धियां भगवान की सेवा में रहती हैं, भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे सिद्धियों की, गुणों की आवश्यकता नहीं है भगवान को, फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, उसी तरह से यद्यपि ये हमें नहीं चाहते हैं, पर मैं जब अपने को इनके चरणों में अर्पित करूंगी तो ये हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लक्ष्मी जी ये आशा रखती हैं। सर्वगुण अपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्ष मिप्सितम, मुकुंद की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वे निरपेक्ष हैं। इस संसार में कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते निरपेक्ष, कि हमें किसी के द्वारा दी गई वस्तु की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, हम अपने आप पूर्ण हैं। अपने आप क्या पूर्ण है, कपड़ा बनाने के लिए मनुष्य समाज चाहिए, यदि मनुष्य समाज के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा न मिले तो हम कैसे कपड़ा पैदा कर लेंगे, या अपने मुख से पैदा करेंगे या पेट से पैदा करेंगे, क्या करेंगे। भोजन करने के लिए अन्न चाहिए, दूध चाहिए, हमेशा दूसरों पर आश्रित हैं, लेकिन श्री भगवान सदा निरपेक्ष हैं, वे अपने आप में पूर्ण हैं। उनके द्वारा दिए हुए सब लोग खा रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं, इसलिए उनको निरपेक्ष कहते हैं। तो ऐसे निरपेक्ष को श्री लक्ष्मी जी ने वर्ण किया, कैसे वर्ण किया, तस्यांश देश उसतिम नवकंज मालाम माद्यन मधु व्रत बरुथ गिरोप घुष्टाम। उनके हाथ में जो माला थी उसके विषय में बार बार ये बात कही जा रही है कि भौंरे मंडरा रहे थे उस पर। नवकंज मालाम उसतिम, परम सुंदर नए नए कमल की माला को, जिस पर माद्यन मधुव्रत बरुत गिरोप घुष्टा, जिस पर भौंरे मंडरा रहे थे, मतवाले भौंरे, फूल के मधु को पी पी करके मतवाले भौंरे उस माला पर मंडरा रहे थे, ऐसी सुंदर माला को तस्यांश देश भगवान के स्कंध प्रदेश में इस माला को भगवान के गर्दन में लगाया लक्ष्मी जी ने, तस्यांश देश उसती नवकंज माला और तस्थल निधाय निकटे तदुरह स्वधाम सब्रीड हास भिक्षण नयने न जाता। तो श्री जी भगवान को माला पहनाई और माला पहना करके भगवान के वक्षस्थल पर देखने लगी, क्योंकि उरस स्वधाम लक्ष्मी जी का वही अपना वास स्थान है। आनंद से विकसित नेत्रों से भगवान के वक्षस्थल को देखने लगी। थोड़ी सी छोटी पड़ती है भगवान से, स्त्री का स्वाभाविक साइज होना चाहिए, भगवान थोड़ा से बड़े थे, इसीलिए उनके वक्षस्थल को देख रही थी खूब ध्यान से। और निकटम निकटे तस्थल, भगवान के बिल्कुल निकट खड़ी हो गई। उस समय लज्जा से मढ़ी हुई मुस्कान थी और आंखें विकसित थी, निकट जाकर के जाता तस्थ खड़ी हो गई। जब श्री जी खड़ी हो गई तब तस्या श्रेय त्रिजगतो जगतो जनन्या, संपूर्ण जगत के जनक पिता श्री भगवान जगत जननी श्री जी को वक्षो निवास न करो परमम विभूत है। तो श्री जी को अस्थिर वास दिए, कहां दिए, वक्षो निवास अपनी छाती पर बाएं भाग पर लक्ष्मी जी को स्थान दिए। तो उस समय श्री जी माला पहनाने के बाद जब स्थान दे रहे थे तो श्री जी भगवान के आगे खड़ी हो गई, ऐसे आगे खड़ी थी, माला पहनाते समय भगवान के सामने थी, इसके बाद सामने खड़ी हो गई। तो भगवान ने उनको वक्षस्थल पर स्थान दिया तो भगवान के सांवले शरीर पर पीले वर्ण की एक रोमावली है जिसको गोल्डन लकीर कहते हैं, श्रीवत्स उसको कहते हैं, जहां श्री के प्रति अत्यंत वत्सल होकर स्नेहवान होकर के भगवान उनको स्थान दिए हैं, उस चिन्ह को श्रीवत्स कहते हैं। वह सोने की लकीर रोमावली इस बात को बताती है कि श्री के प्रति भगवान बहुत स्नेह करते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, इसलिए श्रीवत्स कहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान लक्ष्मी जी से। तो उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए, तो वहां रह करके भगवान के वक्षस्थल पर रह करके श्री स्वाह प्रजा सकरुणे न निरीक्षण है ना, अपनी प्रजा को करुणा भरी स्नेह भरी दृष्टि से श्री जी देखी और जत्र अस्थिता भगवान के छाती पर रह करके अयध्यत साधिपतिम त्रिलोका, तीनों लोक के जीवों को और उनके ईश्वरों को मालिकों को एध्यत वर्धित करती हैं, सुखी करती हैं। भगवान के वक्षस्थल पर रह करके यहां से लक्ष्मी जी भक्तों को देखती हैं या जीवों को देखती हैं करुणा करके, तो वे सुखी होते हैं, वे बढ़ते हैं। बढ़ने का मतलब है विकास करना, सुखी होना, आनंद में रहना। तो भगवान के वक्षस्थल पर रहकर लक्ष्मी जी इस तरह सुखी करती हैं। जिस समय भगवान ने लक्ष्मी जी को वक्षस्थल पर स्थान दिया तो उस समय शंख तुर्ज मृदंगानाम वादित्राणाम पृथुस्वनम, शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे, उनका बहुत बड़ा स्वर हुआ। गंधर्व लोग देवताओं के अनु गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, देवानुगान सहस्त्री नाम नृत्यताम गायताम, बहुत आवाज उत्पन्न हुई नाचने का गाने का और बाजा बजाने का। इस तरह लक्ष्मी जी ने भगवान को चुना। ब्रह्म रुद्रांगिरो मुख्य सर्वे विश्व सर्व विभूम ई डिरे अवित्थैर मंत्र तल्लिंग पुष्प वर्षण, ब्रह्मा भगवान शिव अंगिरा आदि ऋषिजन और विश्व सृष्टि करने वाले सभी लोग भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे सत्य मंत्रों से, झूठी नहीं, सत्य मंत्रों से श्लोकों से स्तुति कर रहे थे और भगवान विष्णु के गुण आदि को प्रकट करने वाले मंत्र बोल रहे थे और फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह श्रीया विलोकिता देवा स प्रजापतयः प्रजा, श्री जी ने जब स्नेह भरी दृष्टि से देखा वहां पर देवताओं को और प्रजापतियों को तो वे सब शिलादि गुण संपन्ना ले भी ले निर्वृत्तिम पराम, उनमें अपने आप शील आदि गुण भर गए और उन लोगों को परम आनंद प्राप्त हुआ, परम सुख मिला, लक्ष्मी जी को भगवान के साथ देख करके। तो लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं और कोई जाता है भगवान का दर्शन करने तो श्री भगवान के दर्शन में सबसे पहले लक्ष्मी जी कृपा दृष्टि से देखती हैं भगवान के पास आने वालों को, तब वह फलता है, फूलता है, सुखी रहता है, निरोग रहता है। इस तरह से सबको सुखी किया, सब परमानंद प्राप्त किए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसी समय से जब लक्ष्मी ने उपेक्षा किया असुरों की, क्योंकि असुर लोग भगवान के सामने नहीं आते हैं, वो उनसे द्रोह करते हैं, झगड़ा करते हैं, सामने नहीं आते हैं, अतः श्री जी की कृपा दृष्टि असुरों पर नहीं पड़ी, तब ये सब निःसक्त हो गए, धैर्यहीन और लोलु स्त्री आदि में आसक्त और निरुद्योग्य व्यापार रहित निर्लज ये सब हो गए। जब से लक्ष्मी जी ने उनकी उपेक्षा किया तब से इनकी ये दशा हो गई। पर देवताओं की बढ़ती हुई, देवता और प्रजापति जन और प्रजा ये सब सुखी हो गए। तो इस प्रकार श्री ने भगवान को चुना। इसके द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी सब तरह से विचार करके, बुद्धि लगा करके जो लक्ष्मी जी ने किया है वही पथ अपनाना चाहिए। जैसे कहने के लिए तो आदमी कह देता है किसी का भी भजन करो सभी कहीं है, लेकिन यह कहना मूर्खता है। वास्तव विष्णु आराध्य हैं, उन्हीं का पूजन होना चाहिए, उन्हीं की भक्ति होनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग सुनेंगे कौन कौन और रत्न उत्पन्न हुए और किस तरह से बंटवारा हुआ, और कल अमृत भी उत्पन्न हो जाएगा और भगवान का मोहिनी अवतार भी हो जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।